चीज को देख लेंगे, हम में से तदक्कुल करने वाले कितने अपराध हैं, हम में से तफक्कुर और ताक्कुल करने वाले कितने अपराध हैं, और महज जज्बात की बुनियाद पर दीन को लेकर चलने वाले कितने अपराध हैं। यही आपको पता चलेगा मौमियात कि अइमा की और कुरान की सिफारिश क्या है, तफक्कुर ताक्कुल तदक्कुर, और हमारा तरह जिंदगी क्या है, महज जज्बात जज्बाती, जिन्हें किसी चीज को चाहते हैं तो भी जज्बात की बुनियाद पर और रद्द करते हैं तो भी जज्बात की। वह तदब करो और तदब्बुर करो अहवालन मावलना मिनल मुमिनीन, उन लोगों के अहवाल और उनकी हालतों में जो तुमसे पहले गुजर गए मोमिनीन में से। कबलतुम कैफा कानू फी हाल तकलीफ वल बला, कि वो किस हाल मुश्किल सख्ती और बलाओं में मुब्तला थे। तो मैं ये चीज कह रहा हूं कि इन मराहल से गुजरने के लिए हम तैयार हैं कि वो किस तरीके से सख्ती और बलाओं के मरहले में थे, हालत में थे। अलम यकूनु अफ़्ज़ल ख़लाइक़, क्या उनकी हालत ये नहीं थी मखलूकात में कि सबसे ज्यादा बोझ उन्हीं के ऊपर था। वह अजहदल इबाद बलाहन, और बलाओं के लिहाज से आजमाइशों के लिहाज से सबसे ज्यादा जहद कोशिशों में मुब्तला होने वाले। वह अब अहले दुनिया फालन, और अहले दुनिया में सबसे ज्यादा तंगी उन्हीं के हाल पर थी। अब क्या फरमा रहे हैं कि वो मोमिनीन, मोमिनीन के लफ्ज़ आपने याद किया, उनकी हालत क्या थी, अफ़्ज़ल ख़लाइक़, अफ़्ज़ल यानी वजनदार, कि उनकी जिंदगियां जो पर बोझ सबसे ज्यादा तमाम मखलूकात में। अजहद बलाहन, बलाओं के लिहाज से सबसे ज्यादा कोशिश और मशक्कत में मुब्तला रहने वाले। वह अव्यता हालन, अव्यता जैद यानी तंगी, हाल सबसे ज्यादा तंग, ये उनकी कहती है। इत्तखज़त हुमुल फ़राऊनतु अदीदन, उनके जमाने के फिरौनों ने उनको गुलाम बना के रखा था। फसामूहुम सू अल अज़ाब, और वो उनको बदतरीन अजाब से दोचार करते थे। वजर्रऊहुम अल मुरार, और उनको मुसलसल तरखियों के घूंट पिलाते थे। सही, और उनकी हालत क्या हो रही थी, कि दुल हला करते वहरिल हौला करते, उनकी हालत यह हो गई थी कि हलाकत की जिल्लत और उनके पहल और गलबे से निकलने का कोई रास्ता उनको नजर नहीं आता। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें शारत नहीं, यानी वो सख्तरीन हालत जो मोमिनीन के इज्तम और कौम पर तारी हो सकती है, आप उसकी मिसाल दे सकते हैं। और जो बात नजर आ रही है वो जब मूसा इब्न इमरान अलैहि सलाम की कौम बनी इसराइल पर जाहिर समझ में आती है। यहां तक कि अल्लाह ने देख लिया, जिद्द फब्र मिन्हुम, उनके सब्र पर रहने की हालत को, आदत और उनके सब्र पर कायम रहना, सब्र पे अजियतें बर्दाश्त करना, अदल अदा सबर किस चीज पर, अजियतों पर सबर, फी मोहब्बत ही, अल्लाह की मोहब्बत में। इस जुमले को कभी ना भूलिएगा कि खुदा ने किस चीज को आजमाया, कि ये मेरी मोहब्बत में बलाओं और अजियतों पर सबर कर रहे हैं लेकिन इस राह को नहीं छोड़ते। जब अल्लाह ने किस चीज को अच्छे तरीके से देख लिया और जांच लिया, वल इहतिमाल लिल मकरूह मिन खौफिही, और तमाम मकरूहात के बोझ को उठाना खौफ खुदा की वजह से, यानी खौफ खुदा का लफ्ज शायद यहां पर इस वजह से है, खौफ खुदा का मतलब कि इंसान पर जब जिंदगी की अजियतें और मकरूहात तारी होती हैं तो वो क्या करते हैं, दीन के रस्ते को छोड़कर और दूसरी राह पे चला जाता है। यहां पर खौफ खुदा ये कि इवन हम पर इतनी सख्तियां और तकालीफ हैं लेकिन उसके बावजूद मैं खुदा के रास्ते को ना छोड़ू इस खौफ से कि खुदा मुझसे नाराज हो जाए। उन्होंने इस राह को तर्क नहीं किया। जअल लहुम मिन मदाकिल बलाए फरजन, जब खुदा ने ये दो चीजें उनमें देखी कि ये मेरी मोहब्बत में बलाओं की अजियत पर सब्र करने वाले हैं और इस खौफ से कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए, हर सख्ती को बर्दाश्त करते हैं लेकिन मेरी राह को नहीं छोड़ते। खुदा ने तंगियों को खत्म करके उनके लिए गुस्सा की राह खोल दी, ठीक। और उसके बाद फिर हुआ है कि उनको खुदा ने क्या क्या नियमतें दी, और फरमाते हैं कि जो कुछ उनकी उम्मीद थी उससे कहीं बढ़कर इज्जत और सरफराजी और दुनियावी बुलंदी उनको हासिल। अब इसको देखें, अब आप फरमाते हैं बज़ाहिर बनी इसराइल फरामैना का लफ्ज, फरामैना का लफ्ज आपने कहा, और इब्तिदा में उनके लिए लफ्ज मोमिनीन कहा गया कि मोमिनीन जो गुजर गए। फंजुरू, बस नजर करो, कई फकानू आइफो कामते के उदाहरों मुझता में आता हूं, इस बात पर नजर करो कि किस तरीके से उनकी जमीयतें मुजतमे थी, यानी उनकी जमीयत में कोई इंतशार नहीं था। वल अहवा को मुत्तफिकतन, बहुत खूबसूरत लफ्ज़ है अहवा या हवा का लफ्ज़, कुरान करीम में भी इस्तेमाल किया हवा। हवा का मतलब होता है कि जो इंसान की पासिंग थॉट्स होती है, यानी यूं ही आपके पास हो जाए, जरूरी नहीं कि उसके पीछे बहुत गहरी फिक्र और नजरिया भी पाया जाता। अहवा को मुत्तफिक, उनकी हवा अहवा भी आपस में मुत्तफिक थी, यानी कि जब वो यूं ही भी चीजें सोचते थे तो उसमें भी इख्तलाफ में इंतजार नहीं पाया जाता। वल कुलूब मुअतदलतन, उनके कुलूब हालत एतदाल पर कायम थे, इफराद और तफरीद की राह जो है वो दीन की राह नहीं है, आप इस तरफ धड़क गए उस तरफ चले गए। इस्लाम की राह क्या है, दीन की राह क्या है, इख्तिसाम पास दरमियान की राह, यानी कि इंसान सिरात मुस्तकीम पर कायम रहे, ना राइट ना लेफ्ट। उनके कुलूब हालत इत्तेदाद पर कायम थे, वल अयदी मुतरादिफतन, उनके हाथ एक दूसरे के रदीफ थे, एक दूसरे के मददगार थे। वसुयूफ व मतनाफरतम, और उनकी तलवारें एक दूसरे की मुसरत करने वाली थी। वल बफाउ नाफिज़तम, और उनकी बसीरतें नाफिज होने वाली। वल अज़ा वाहिदतम, और उनके अज़ामिन वाहिद थे, यानी उनके गोल्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनका विजन वाहिद था। अलम यकूनू, इन सिफात को हासिल करने के बाद अलम यकूनू, क्या ऐसा नहीं हुआ कि अरबाबन फी अक्बारिल अर्दीन, कि वो अरबाब थे, रब थे जमीन के अक्तार में, जमीन के तूरज में। वह मलूकन अला रकाबिल आलमीन, और दुनिया के रहने वालों की गर्दनों पर बादशाह मालिक थे। आप समझे कि अगर मैं हैसर कौम तरक्की करना होती है तो क्या चीज सही होती, कि पहली वो चीज जो मैंने कुरान करीम की आयत में आपके सामने पढ़ी कि अपने नफ्स को जहत खुदाबंदी पर इस्तेमाल करना, इस हालत से यानी कि नफूस को डेवलप करना। और यहां पर इमाम ने क्या फरमाया कि मोमिन जब भी होता है, यानी खुदा कभी भी इंसानों को इस तरीके से कामयाबी नहीं देता कि हमने अपनी अहलियत को साबित नहीं किया, अपनी अहलियत अपनी लियाकत को साबित किए बगैर खुदा की बारगाह से कुछ नहीं मिलता। उस अहलियत को साबित करने के आप दो बुनियादी बातें मैं कहते हैं कि जो आप दुश्मन हैं उनकी अजियतों पर सब्र अल्लाह की मोहब्बत में, और दूसरी बात आप बयान फरमाते हैं कि जो मकरूहात जमाना है उनके बोझ को बर्दाश्त करना, और इस खौफ से कि कहीं मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए खुदा की राह को तर्क ना करना। अब हम इस चीज पर कितने राय हैं, वही मैं कह रहा हूं सारी हर चीज कंडीशन बेस्ड है। खुदा ने आइमा ने सब बातें मेरे और आपके सामने रख दी, अब मैं और आप सोच रहे हैं कि इस मैार पर हम जितना पूरा उतरते हैं उस एतबार से नतीजा मिल जाए। जितना इन शराइत की पाबंदी करते हैं, जितना इस मकाम पर जिस दर्जे में हामिल हैं, उतना नतीजा मेरा आपके पास है। बल्कि क्योंकि खुदा ने इस आलम में सिफत रहमानियत और रहीमियत को बाकी तमाम सिफात पर मुकद्दम रखे हैं, इस वजह से खुदा की रहमानियत और रहीमियत हमें हमारे बुरे हाल से बाहर हाल बहुत बचाए रखती है बहुत ज्यादा। एक तो ये चीज है कि हम अपने बुजुर्गों की नेकियों का भी बहुत कुछ खाते हैं, यानी कि जितनी हमारी अच्छी हालत है उसमें हमारा क्रेडिट तो शायद कुछ भी ना हो, लेकिन वो बुजुर्गान वो अफराद जिन्होंने वाकई कुर्बानियां दी, जिनकी नेकियां हैं, जिनकी नेकियों की वजह से आज हम मुसलमान और मोमिन हैं, उसका भी बहरहाल एक फायदा है जो हमें हासिल। और फिर ये कि खुदा की नेमत खुदा की मेहरबानी कि जो सिर्फ इस वजह से कि हम कहते हैं कि हम तेरे हैं, सिर्फ इस कॉल को कबूल करने के बाद बहुत कुछ मेहरबानी और रहम करम कर देती है। और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का वजूद कि आपने खुद इस बात को बयान फरमाया कि हम मुसलसल वो मुसीबतें कि जो तुम्हारे अमाल की वजह से तुम पर नाजिल होती हैं, हम उनको तुमसे बर्दाश्त करते रहते हैं, डालते रहते हैं, तुम्हारा बचाव करते रहते हैं मकरूहा के जमाना से। तो ये सारे के सारे खुदा के इनामात हमारे पास हैं, तो हमारी हालत वो नहीं है कि जो हमारे नफ्सों की कैफियत के मुताबिक होना चाहिए, यानी मेरिट की वजह से हमें जिस जगह पर होना चाहिए ऑन मेरिट हम उससे बहुत बेहतर हैं। लेकिन एक बात तयशुदा है कि अगर हम इन बुनियादी चीजों को शराइत को पूरा नहीं करेंगे तो ऊपर नहीं जा पाएंगे, इसमें अलाउंस नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि ये तो अलाउंस हमें मिल गया कि हमें हमारा जो हाल होना चाहिए वो नहीं है खुदा की मेहरबानी से, लेकिन अगर मैं और आप बलद होना चाहते हैं तो वो बलंदी हमें नसीब नहीं हो पाएगी जब तक कि शराइत को पूरा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद आप ये बयान फरमाते हैं कि जब इन्हीं लोगों का ये हाल हो गया कि उनकी यकजहती दरहम बरहम हो गई और उनके कौम और उनके उलू मुंतशिर हो गए, अलग अलग रस्तों में चल पड़े कि इख्तिलाफ कलमा व इश्ताक उल्फा, ये लफ्ज आपने बयान फरमाया, उनका कलमा वाहिद नहीं रहा मुख्तलिफ हो गया और इनकी जो उल्फतें थी वो एक दूसरे से मुंतशिर हो गई। तो उनकी हालत क्या हुई कि खुदा ने कद खला अल्लाह अन्हुम लिबासा करामतही, कि खुदा ने उनको जो करामत का लिबास पहनाया था वो उनसे उतर गया, उतार दिया गया, ठीक। और उनके लिए क्या बचा उनके किस्सों में से, वो बाकिया फफो अखबार हैं और उनकी खबरों के जो किस्से हैं उनमें से क्या बाकी रहा, इबरत लिलमुअतबरीन, इबरत हासिल करने वालों के लिए इबरत बाकी है। दो हाल, कि या अगर इस रस्ते पर चलते हो खुदा की तरफ से लिबास करामत हासिल करो, दुनिया और आखिरत का शराफ और इज्जत हासिल करो, और अगर इस राह पर चलते हो तो वही है कि तुम्हारी दास्तान दूसरों के लिए दास्तान इबरत बन के बाकी रहेगी और कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। इसको जरूर पढ़िएगा खुद भाई और आपके यहाँ
तमाम बातें
भी होती हैं। कौन
सी
सब एक्शन है तुम्हारी, मैं मुकम्मल कर फिर इंशाल्लाह उसका एक सुना दो वन फाइनल। अब ये सब बातें बयान करने के बाद कुछ है यही बड़ी बात आई है कि अली अलैहिस्सलाम अब अपने सामने जो लोग बैठे हैं उनकी बात करते हैं, यानी वो चीज है इसमें ही आ जाए बेशक तुमने अब अपने सामने बैठी दुकान को हाजिर करना, पद नकम तुम ऐम तुमने अपने हाथों को तोड़ा लिया, मिन हब्ल काबा इताअत की रस्सी से अपने हाथों को तोड़ा दिया रख लिया, यानी कि जब एक इंसान कलमा पढ़ता है खुदा और रसूल और इमाम को कबूल करता है अक्ल के एतबार से, तो वो क्या करता है कि एक रस्सी से अपने हाथ बांध लेता है, अपने हाथ में कड़ा बांध लेता है, कि जो कड़ा बांध है माइनस इस तसव्वुर के साथ करने लिए है कि ये कड़ा क्या है, कि इसका एक सिरा इमाम के हाथ में है, दूसरा सिरा मेरे हाथ में। और अब इमाम जो है वो जिस रास्ते पर लेके चलेगा उस रास्ते पर इमाम के साथ चलना। कि इमाम अली ने सलाम फरमाते हैं, तुमने क्या किया, तुम्हारी हालत क्या है, कि तुमने इस इताअत की रस्सी को जो तुम्हारे और तुम्हारे इमाम के माना है इसको तोड़ा के अपने हाथ को लगा दे दिया। وَفَلَمْ تُمْحِفْنَ اللَّهِ الْمَغْرُوبَ عَلَيْكُمْ بِإِحْكَامِ الْجَاهِلِيَّةِ تم نے جب دین خدا کو قبول کیا تھا اسلام اور ایمان کی وجہ سے خدا نے ایک محکم حصار ایک محکم پناہ گاہ تمہارے لیے کھینچ دی تھی، تمہارے لیے ایک قلعہ محفوظ اور مضبوط قلعہ ہے یہ اسلام جس کے اندر تم زندگی بسر کرتے ہو۔ تم نے جاہلیت کے احکام کی پیروی کے ذریعے سے خدا کے قائم کیے ہوئے اس مضبوط قلعے میں دراڑیں بن دی، رخنا اندازی کر دی۔ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ امْتَنَّ عَلَى جَمَاعَةِ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ فِيمَا عَقَدَ بَيْنَهُم مِّنْ حَقِّ هَٰذِهِ الْأُلْفَةِ الَّتِي يَنْتَقِلُونَ فِي ظِلِّهَا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالمین نے اس جماعت پر، اس امت کی جماعت پر اپنی نعمتوں کے ذریعے سے وہ لطف و احسان فرمایا کہ جس کی قدر و قیمت کو مخلوقات میں کوئی نہیں جان پہچان سکتا، جس کے سائے میں وہ قیام کرتے ہیں اور جس کے کنارے عاطفت میں وہ پناہ لیتے ہیں، لیکن تم نے اس چیز کو خراب کر دیا جو اسلام کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے جو پیش بہان نعمت خدا نے تمہیں عطا کی کہ جس کی قدر و قیمت کو کسی شے کے مقابلے میں تولا جا سکتا، اس چیز کو تم نے خراب کر دیا۔ وَعَلَمُوا تم اس بات کا علم حاصل کر لو اَنَّكُمْ فِرْتُمْ بَعْدَ الْحِجْرَةِ عَرَابًا کہ تم ہجرت کے بعد پھر سے بددو ہو گئے ہو۔ ہجرت کے بعد یعنی پہلے تم نے ہجرت کی پیغمبر اکرم کے ساتھ، کہاں سے ہجرت کی، کفر سے ایمان کی طرف ہجرت کی، شرک سے توحید کی طرف ہجرت کی۔ اس ہجرت کرنے کے بعد تم پھر صحراؤں میں بھٹکتے ہوئے وادیاں نشین بن چکے ہو کہ جس جگہ پر، جس محکم منزل پر، جس محفوظ پناہ گاہ پر پیغمبر اکرم نے تمہیں پہنچا دیا تھا، تم وہاں سے نکل کر پھر صحراؤں میں بھٹکنے والے بدو بن گئے۔ وَبَعْدَ الْمُوَالَاتِ اَحْزَابَ اور موالات، یہ وہی اسی لفظ سے کہ اس پیغمبر اکرم نے جو تمہارے درمیان رشتہ ولایت قائم کیا تھا اس موالات کے قائم ہونے کے بعد پھر تم گروہوں میں بڑھ گئے۔ ٹھیک ہے کہ جب یہ رشتہ ولایت قائم ہوتا ہے تو تمام مؤمنین ایک سائے پہرے ہوتے ہیں اور وہ سایہ ہوتا ہے حزب اللہ، لیکن تم اس رشتہ موالات کے، اس ولایت کے قائم ہونے کے بعد پھر گروہ میں پڑ گئے۔ مَن تَتَعَلَّقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا بِاسْمِهِ، تمہارا تعلق اسلام سے سوائے نام کے اور کچھ نہیں رہ گیا۔ وَلَا تَعْرِفُونَ، اب یہ دیکھیں کس قدر درست ہے ہمارے یہاں، وَلَا تَعْرِفُونَ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا رَسْمَهُ، اور ایمان سے تمہاری معرفت سوائے رسم کی اور کچھ نہیں۔ ایگزیکٹلی ہماری حالت ہے یا نہیں، ایگزیکٹلی یعنی بغیر کسی بھی اشتباہ کہ اسلام سے تمہارے پاس سوائے نام کے کچھ نہیں بچا اور ایمان کی معرفت سے تمہارے پاس سوائے رسم و رواج کے کچھ نہیں بچا۔ تَقُولُونَ النَّارَ وَالْعَارِ، تم یہ کہتے ہو کہ آگ قبول ہے اور آگ یعنی بے عزتی قبول ہے، یعنی وہی ایام جاہلیت کے اس پہ چلے گا کہ جب ایام جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ ہر شخص اپنے قوم قبیلے کی عزت کے لیے لڑا ہوتا تھا اور اس وقت ان کا نعرہ یہ ہوتا تھا کہ آگ میں کود جائیں گے لیکن بے عزتی برداشت نہیں کریں گے۔ وہ جو آپ کا سنا ہوگا نا کہ پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، وہی آر اور نار والی بات، कि उसने मेरे यहां से पानी कैसे पी लिया, उसका घोड़ा मुझसे आगे कैसे बढ़ गया, ये मेरी बेइज्जती है, उसके लिए सब मर जाए कट जाए कोई की बात। तो आप कहते हैं कि तुम वही दौर जाहिरियत का नारा बुलंद करते हो कि आप कबूल है और आप बेइज्जती कबूल नहीं। क्या तुम ये चाहते हो कि इस्लाम की जो है हुर्मत खुदा ने तुम्हें अता की थी, उस हुर्मत को तबाह करके इस्लाम के जर को अंधार पलट दो, तुम्हारी यह कहानी वो महज कि जैसे अल्लाह ने जमीन में इंसानों की पनाह का जरिया बनाया और मखलूकात के लिए बारे से अमन करार दिया। याद रखो, अगर तुमने इस्लाम के अलावा किसी और जगह का रुख किया तो ये कुफार तुमसे जंग करने के लिए उठ खड़े होंगे। फिर ना जिब्राइल हैं, ना मीकाईल हैं, ना महाजरीन हैं और ना अंसार हैं कि जो तुम्हारी नुसरत के लिए हैं। फिर तुम इस बात के मुंतजर रहो कि तलवारों को खटखटाओ, मेरे तलवारों के दस्तों पर दस्तक दो और इस बात के मुंतजर रहो कि खुदा का अजाब या खुदा की मशीयत तुम्हारे लिए क्या लेकर आती है। खुदा की गिरफ्त से अनजान बनकर, उसकी पकड़ को आसान समझकर और उसकी सख्ती से गाफिल होकर उसके पहर और अजाब को दूर न समझना। से एक जुमला मैंने आपसे कहा था कि इंसान की दुनियावी खुशहाली में सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि इंसान इस झूठी फिक्र में मुब्तला हो जाता है कि खुदा मुझसे राजी है, और इसी वजह से खुदा मोमिन को दुनिया में सुकून से नहीं बैठने देता। इसी वजह से, ताकि मोमिन जो है वो इस चीज में, इस फंदे में ना फंस जा सकता है। आप ये फरमाते हैं कि उसकी गिरफ्त से अनजान बनकर, उसकी पकड़ को आसान समझकर और उसकी सख्ती से वाकिफ होकर उसके कहर और अजाब को दूर न समझना। فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَجْعَلِ الْقَرْنَ الْمَاضِيَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلَّا لَتَرْكِهِمُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهَى عَنِ الْمُنكَرِ। इस बात को समझ लो कि अल्लाह ने गुज़श्ता उम्मतों पर लानत नहीं की मगर इस वजह से कि उन्होंने अम्र बिल मारूफ और नहीं इस मुनकर को तर्क कर दिया था। फजअल्लाहु सुफहा लिरुकूब अल-मआसी, तो अल्लाह ने कौम के बेवकूफों पर गुनाहों के साथ चिमटे रहने की वजह से लानत की। और उलमा पर इस वजह से लानत की कि वो लोगों को बुराइयों से रोकते नहीं थे, यानी हक बात का बयान न करना, लोगों को जिस गलत राह, जिस गलत रविश पर वो चल रहे हैं, यानी मैं मिसाल के तौर पर इस वजह से कि ये सब अवतार उनसे नाराज हो जाएंगे, ये मिसाल के तौर पर कल मेरी तारीफ कर रहे थे आज मेरी बुराई करेंगे, इस खौफ से मुब्तला होकर मैं इस बात को सुनाना बंद कर दूं कि सही है गलत है, इस बात का तस्करा ना करूं कि मसाइल क्या है हमारे, हमें क्या फर्क है। तो इमाम फरमाते हैं कि खुदा ने बेवकूफों पर, अवामन्नास पर, कम अकलों पर इस वजह से लानत की कि वो गुनाहों के साथ चिमटे रहते थे, गुनाहों पर इसरार करते थे, गुनाहों का तसलसल रखते थे, और उलमा पर इस वजह से लानत की कि वो अवामन्नास को उनकी बुराइयों से रोकते हैं, उनकी खराबियों को बताते हैं। तो ये उसूल है कि हम और इन उसूलों की बुनियाद पर मैंने आपके सामने ये दो आयतें, जो आयत एक असासी कलमा बयान करती है कि अगर तुम मिनहसुल कौम अपने अंदर तब्दीली चाहते हो तो अपने नफूस में जो कुछ है उसको बदल दो, उसकी हालत को बदल दो। और कुरान और मासूमी अलैहिस्सलाम से इस्तेमाल करते हुए कि वो क्या है कि जिसे अपने नफ्सों में बदलना है, वो अपने नफूस की जहत है। इतनी वजह तो वजहिया लिल्लाह, कि मैंने अपनी जहत का रुख किस तरफ कर लिया, अल्लाह की तरफ। ये काम करना है अपने नसों के अंदर इस चीज को चाहना है। और अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें, अब मैं ये जुमला शायद बेहतर तरीके से बयान कर सकता हूँ क्योंकि उसका बैकग्राउंड बन गया कि हम अभी सिर्फ ये बात चाहते हैं, लेकिन इस चाहत के साथ में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। उन मुसीबतों के मराहिल से नहीं गुजरना चाहते, सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारी हालत बेहतर हो जाए और बीच में जितना कुछ आने वाला है वो सब स्किप हो जाए और हम ए के बाद सीधा जेड पे आ जाए और बी सी डी ई एफ वाले जितने मराहिल हैं सब कदम पर उठा लें, ये चाहते हैं। तो इस बात को सोच लीजिएगा क्योंकि अभी तक खुदा ने किसी के साथ ऐसा नहीं किया, अभी तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, ना अव्वलीन में से ना आखिरीन में से। हर कौम को अपनी मेरिट प्रूफ करना पड़ी है और उन्हें इस बात को साबित करना पड़ा है अपना खून और अपनी आबरू देकर कि हम वाकयन खुदा का निजाम चाहते हैं। और ये लफ्ज मैंने बिलावल अली का, उसको टेस्ट कर सकते हैं हर जगह, अपनी इज्जत आबरू दुनियावी मनफात अपना खून अपनी नस्लें वो देने के बाद उन्होंने इस बात को साबित किया कि हम तुझे चाहते हैं तेरा निजाम चाहते हैं, तो खुदा ने उनको चीज रखा। इसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है, इसके लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ठीक है, तो हम अभी उस खेल पर है, उसके आगे कुछ नहीं हमारे पास। आखिर में एक चीज के हम ये विलायत के हवाले से हमारी बात हो रही थी, इंशाल्लाह अगली दफा जिसके बाद में कोशिश करूंगा कि ये बहस सिमट जाए, वो ये है कि हमने जैसे बात की कि विलायत इलाहिया हर विलायत की बुनियाद है, तो विलायत इलाहिया के हवाले से इंसान किस तरह आगे जा सकता है और खुदा ने अपने बंदों के लिए अपने कुर्ब के अतबार से क्या कुछ रखा है, इंशाल्लाह इस पर अगली दफा बात करेंगे। आखिर में मैं आपको इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की एक दुआ से चंद कलिमा सुना दूं कि यहाँ भी विलायत का तस्करा है और जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से एक गोशा अर्ज करूं कि इस विलायत का फायदा क्या होना चाहिए। ये इसलिए भी अर्ज कर रहा हूं कि दुआएं हैं जो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से मंकूल है रोजाना पढ़ने की, उनको चाहिए हर मोमिन को के पढ़े, और इसी तरीके से हर दिन की ज़ियारतें हैं जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से मंकूल है, तो हम में से हर एक को चाहिए कि वो भी पढ़ें ताकि दिन मतलब हर दिन में जो खुदाई की जानिब से बरकात हैं वो भी हमें नसीब हों और बाकी जो कुलज़ात मानवी हैं वो भी हासिल हों। ये मंगल के रोज की सेशन में मंगल के रोज की दुआ है, इसमें से चंद मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहु कमा यस्तहिक्कुहु, कि हम है अल्लाह के लिए और हम उसी का हक है, कमा यस्तहिक्कुहु हमदन कतीरन, और वही मुस्तहिक है हमद कतीर का, वअऊज़ु बिही मिन शर्र नफ्सी। सबसे पहला जो नाम फरमाते हैं कि मैं अपने नफ्स के शर से उसकी पनाह करता हूँ, और बेशक अगर नफ्स को उसके हवाले और मादियत के गवर में छोड़ दिया गया तो नफ्स नफ्स से अमारा है, यानी हुक्म देकर धकेल कर बुराई में पोशा और उनके हाथ में डाल देगा इंसान को, तो बेशक ये नफ्स सू की तरफ अमर करता है मगर ये कि मेरा रब रहम करे। वअऊज़ु बिही मिन शर्र शैतानिल लज़ी, और मैं उसी की पनाह मांगता हूँ उस शैतान के शर से, यज़ीदुनी ज़म्बन इला ज़म्बी, जो मेरे गुनाहों पर गुनाहों का इजाफा करता चला जाता है मेरे नामे अमल। वअअ'तज़ु बिही, और उसी की पनाह चाहता हूँ, हिर्स आप समझते हैं ना, तावीज हिर्स यानी पनाह के लिए, अहतरज़ उसी की हिर्स और पनाह चाहता हूँ, मिन कुल जब्बारिन फाजिरिन हर फाजिर हुक्मरान से, व सुल्तानिन जाबिरिन और साहिब जौर सुल्तान और बादशाह से, وعدو قاہر اور اس دشمن سے کہ جو مجھ پر غالب ہو جائے اس سے خدائی کرنا چاہتا ہوں. اللہم اجعلنی من جندک, اے خدا مجھے اپنے جند یعنی اپنے لشکر میں سے قرار دے. فَإِنَّ جُنْدَكَ هُمُ الْغَالِبُونَ, کہ بس تیرا لشکر ہی غلبہ پانے والا ہے. وَجْعَلْنِي مِنْ حِزْبِكَ, اب اس دائرے کو امام نے تھوڑا سا چھوٹا دیا. جند یعنی لشکر بہت سمجھ لی, حزب یعنی گروہ. وَجْعَلْنِي مِنْ حِزْبِكَ, اور مجھے میرے اپنے گروہ میں قرار دے. فَإِنَّ حِزْبَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ بے شک تیرا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے. وَجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ, اور مجھے قرار دے اپنے اولیاء میں سے. فَإِنَّ أَوْلِيَائِكَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, کہ بس تیرے اولیاء ہی وہ ہیں کہ جو ہر حزن خوف سے باہر ہیں. جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ وسلم کی زیارت زیارتوں میں سے ہیں, اور اس کے پڑھنے کے لیے جو دن تاکہ ہیں وہ اتوار کے دن. سلام کے بعد بیان کیا جاتا ہے پہلے سلام, اس کے بعد وَنَحْنُ لَكَ أَوْلِيَاءٌ مُقَدَّمُونَ, کہ ہم کیا ہیں, ہم آپ کے اولیاء ہیں اور تصدیق کرنے والے ہیں. ہم آپ کے اولیاء ہیں اور ہماری ولایت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے, کہ ہم تصدیق کرنے والے ہیں. مصدقون, وَلِكُلِّ مَا عَطَى بِهِ أَبُوكَ وَعَطَى بِهِ وَفِيُّهُ مُسْلِمُونَ, اور جو کچھ آپ کے والد کو عطا ہوا اور ان کے وصی کو, اس کے سامنے تسلیم. صحیح, ہم آپ کی ولایت کی تصدیق کرنے والے ہیں, اور آپ کے جو کچھ آپ کے والد اور آپ کے شوہر کو ان کے وصی کو عطا ہوا اس کے سامنے تسلیم ہیں. وَنَحْنُ نَسْأَلُكَ, یہ آخری جملہ یاد رکھیے گا, وَنَحْنُ نَسْأَلُكَ, اور ہم سوال کرتے ہیں, اللہم کہ اے خدا, اِذْ كُنَّا مُفَدِّقِينَ لَهُمْ, کہ جب ہم ان ہستیوں کی تصدیق کرتے ہیں, انتو الحقنا بتصدیقنا بالدرجات العالیا, تو اس تصدیق کی وجہ سے ہمیں اپنی بارگاہ میں عالی بلند درجہ رتبے تک پہنچا دے. لنبشر انفسنا, تاکہ ہم اپنے نفوس کو بشارت اور خوشخبری دے سکیں. فہرنا بے ولایتہ, کہ ہم ان کی ولایت کے ذریعے سے طاہر ہو گئے. اس جملے کو یاد رکھیے کہ اہل بیت اطہار کی ولایت جب تک نفسوں کی طہارت کا سبب نہیں بنتی, اہل بیت کی تصدیق اگر نفوس کی طہارت کا سبب نہیں بنتی تو وہ ولایت نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.